श्री संत राम स्वरूप नवम महंत श्री रामदास जी महाराज के चरणों में अपनी स्तुति को प्रणति को समर्पित करते हुए, भक्त भगवान से भिन्न नहीं होता है, आराध्य से आराधक भिन्न नहीं होता है, दोनों का अभेद संबंध होता है, उसी तरह से संत राम के स्वरूप में ही भक्त स्वरूप में उपस्थित जो इस पुराण कथा के रसिक वृंद हैं, उनको आज की कथा बतलाने में मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। और मेरा तो इस प्रक्रम में रोज नित्य नित्य नूतन अनुभव हो रहा है। आज मैं सोच रहा था कि थोड़ा और पहले मैं पहुंचूं, मुझे बहुत छटपटाहट थी, लेकिन ऐसा क्रम आ गया कि ठीक मैं 8 बजे ही पहुंचा। मैं सोचता हूं कि मैं हमेशा 15 मिनट 10 मिनट पहले पहुंचूं। तो कल महाराज श्री ने कहा कि थोड़ा सा हमको जल्दी हो जाता है, तो मुझे लगा कि उनकी कुछ न कुछ इच्छा है। और यह संकल्प मेरे मन में हुआ था कि मैं यहाँ लगातार 2-3 महीने तक दर्शन करूं सुबह शाम, यह भी अंदर इच्छा हो रही है, होती थी पहले से ही, लेकिन हमको लगा कि यह सब जो योगानुयोग है वह महाराज की ही इच्छा है, मेरे इच्छा से तो संभव नहीं है। तो एक दूसरे में वो मिलते जाती है और साक्षात वो भगवान करा ले रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। वो मुझ में शक्ति नहीं है अथवा मेरे चाहने मात्र से नहीं होता है, क्योंकि हम लाख प्रयत्न करते हैं फिर भी नहीं हो पाता है, और उनकी इच्छा होती है तो बिना यत्न के भी वो सिद्ध हो जाता है, यह मैं अनुभव कर रहा हूं। तो यदि कथा हम पढ़ते हैं और पढ़ करके भूल जाते हैं, उसके अपेक्षा यदि उसको मनन करें, जीवन में अनुभव करें, तो ज्यादा हमारे लिए फलदायी होता है। हमारे साथ जो जो घटनाएं घटती है हम उसको अनुभव करते हैं, आखिर हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों। तो ऐसे जो अनुभव आधारित जीवन है वही जीवन सफल होता है, और यदि जीवन के अनुभव नहीं है तो ऐसे गाड़ी चलते कहीं भी चली जाती है, उसमें प्लेटफॉर्म नहीं आते हैं, उसमें जो स्टेशन नहीं आते हैं, और जिस गाड़ी में स्टेशन नहीं आते हैं वहां नहीं पैसेंजर उतर सकते हैं और नहीं चढ़ सकते हैं। इसलिए जो हमारे जीवन रूपी गाड़ी है इसमें विराम प्लेटफॉर्म देख करके चलना चाहिए, अनुभव से अपने चलना चाहिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये एक अनुभव की बात है। मैं ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कहने से जो साधक होता है उसकी धीरे धीरे सिद्धियां जो है वो नष्ट होती है, तो वह अहंकार आता है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कह दिया कि मुझे आपको भी कुछ इसका लाभ मिले, आप भी अनुभव करें। अब इसके बाद मैं कुछ कहूंगा नहीं इस विषय पर। जैसा कि कल मैंने बतलाया था कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, मुनि लोग व्यास जी से पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के विषय में आप हमें कुछ सुनाइए, कारण क्या है कि इसका प्राण तत्व है श्री कृष्ण का अवतार। तो श्रुत जी ने कहा कि देखो भाई, संसार में जब भी भार बढ़ता है तो भार को कम किया जाता है। नाव में यदि भार बढ़ जाए तो नाव डूब जाएगी, उसी तरह धरती की भी एक अपनी क्षमता है, कितना पुण्य और कितना पाप होगा तो ये चलेगी। जब ज्यादा पाप हो जाएगा, पाप का भार बढ़ जाएगा, तो पुण्य कम होगा तो डूबने की स्थिति आ जाएगी। हम अधिक भोजन कर लेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। तो उसी तरह ये जो धरती मैया हैं, इनका कुछ भार सहन की क्षमता है, और वो पाप का जब भार बढ़ जाता है तो भगवान उस भार को कम करने के लिए अवतार लेते हैं। तो ऐसी स्थितियों में अब सामान्य व्यवहारिक रूप से आप देखें, वृक्ष में जब ज्यादा पत्ते पड़ जाते हैं, डालियां ज्यादा आ जाती है, तो माली उसको छांट देता है, नहीं तो हवा की झोंके आएगी और मूल के साथ उसको नष्ट कर देती है। तो जो पृथ्वी है यह नारायण की अर्धांगिनी है। मैं बता चुका हूं समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी, तो इसके भार को कौन कम करेगा, यह जवाबदारी भगवान की ही है। और हम सब साधु संत गृहस्थ सब उनके बच्चे हैं, तो इसलिए वह स्वयं ही इसके भार को कम करने के लिए अवतरित होते हैं। और जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। तो भगवान जो है वह गो और द्विज के हितकारी है। गाय का अर्थ पृथ्वी भी होता है और गाय का अर्थ गो माता भी है और गाय का अर्थ ये इंद्रियां भी हैं। तो इन इसके धरती माता के भार को कम करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान यदुवंश में अवतार लेते हैं और लेकर के कालनेमी का वध किया और उग्रसेन के पुत्र कंस के रूप में उत्पन्न होते हैं, फिर कंस का संहार किया, अरिष्ट धेनुक केशी प्रलंब नरक सुंदासुर जो अत्यंत भयंकर भयंकर राक्षस है उनका संहार किया और बलि के लड़के बाणासुर और भी जो महापराक्रमी दुरात्मा दैत्य हुए उन दैत्यों का संहार करने का प्रक्रम, दैत्यों का अभिमान नष्ट करने का प्रक्रम भगवान ने किया। कारण क्या है कि पूछा कि भाई दैत्य है कौन, जैसे हम खाते पीते हैं उसी तरह से दैत्य भी तो खाते पीते हैं। कहा नहीं, हमारे और आपके दोनों, हमारे और असुरों के जीवन में दोनों में अंतर है। दैत्य वह है जो चाहता है हम सबके सब खा लें और हम सबके सब ग्रहण कर लें और हमारे जैसा कोई है नहीं। दूसरे को जो देता नहीं है वही दैत्य है, सोचता है हम ही जिए और सबको हम ना जीने दे, सर्वोपरि हमारी सत्ता स्थापित हो, वह दैत्य है। दैत्यों का नाम है असुर। असुसु प्राणेषु रमन्ते इति असुराहा उपनिषद कहता है। असु प्राण रक्षा के लिए जो हमेशा यत्न करते हैं, धर्म रक्षा में उनका यत्न नहीं है, इसलिए वो असुर है। खाओ पियो मौज करो। दैवी संस्कृति हमेशा दूसरे को खिला करके खाने में रहती है, जबकि आसुरी संपत जो होता है, असुर जो होते हैं, वो दूसरे को छोड़ करके स्वयं भोग में लगे रहते हैं। इसका उदाहरण देखें, अमृत समुद्र मंथन होता है, दैत्य और दानवों की दोनों की, दैत्य और देवताओं की स्थिति से आपको पता चल जाएगा कि दैत्य लोग को भ्रष्ट करने के लिए भगवान मोहिनी अवतार स्त्री का स्वरूप धारण करके आते हैं। वह जानते हैं कि दैत्यों के मन में स्त्री के प्रति, भोग के प्रति लालसा होती है, इसलिए मोहिनी रूप धारण करके आते हैं और वो बड़े ही प्रेम से उसके तरफ बढ़ जाते हैं और बढ़ करके कहते हैं ये इतनी अच्छी सुंदर स्त्री कहाँ से आई, मेरे पास आओ मेरे पास आओ, ऐसा कह करके और वो भोग भोगने के लिए उन्मत्त हो जाते हैं। भगवान इस बात को जानते हैं, वो उनको अमृत के जगह मदिरा पान करा देते हैं और मदिरा पान करके वो उन्मत्त हो जाते हैं। इस प्रक्रम में राहु जो है ना अयोग्य होते हुए पीने का यत्न करता है, तो वह अपने सिर को कटा बैठता है, भगवान के चक्र से उसका सिर कट जाता है। तो दो ग्रह हो गया, राहु और केतु। अभिप्राय यह है कि भोग की लालसा में रहने वाला व्यक्ति ही असुर है, और यदि वह भोग नियंत्रित हो, शास्त्र की मर्यादा में हो, दूसरे को खिलाने के पश्चात हो, वह क्या है, सुर है। जैसे हम भोजन बनाते हैं तो उसमें हर में एक भावना होती है कि हम ये भगवान के लिए बना रहे हैं, इसलिए चखते नहीं है बीच बीच में। कितने लोग भोजन बनाते रहते हैं, चखते रहते हैं, ऐसा चखना उखना नहीं चाहिए। आप भगवान के प्रेम में भोजन को बनाओगे श्रद्धा के साथ, तो भोजन स्वाभाविक रूप से मीठा होगा, और भोजन बनाने के बाद यह विधि है कि गाय के लिए दिया जाए, और फिर उस भोजन में कृषक का अंश है, जो खेती करने वाला खेडूत है उसका अंश है, कितनी चींटियां मरी होगी उसका अंश है, पानी डालने वाले का अंश है, भगवान सूर्य नारायण का अंश है, अग्नि देवता का अंश है, वायु नारायण का अंश है, जितना अंश है देवताओं का, अग्नि वायु सूर्य सबके लिए अर्पण का विधान है। इसके लिए ब्राह्मणों को वैश्व देव बतलाया गया है कि आप घर में वैश्व देव करो। वैश्व देव आप जब करोगे, वैश्व देव मतलब क्या, आ तो विश्व के देवी देवताओं को वो अन्न अर्पित कर दो, जब वो तृप्त हो जाए तब भगवान को भोग लगाओ, नहीं तो उसके पहले भगवान भी ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उनकी संतान उपवास रहती है, और अतिथि आए उसे खिला करके तब खाओ। तो वो वैश्व देव वाला जो भोजन है, भगवान के खिलाने के पहले भी अतिथि का भोजन का विधान है। अतिथि जो है भगवान से भी ज्यादा बढ़कर कहा गया है, प्रतीक्षा करनी चाहिए अतिथि की। वैश्व देव करते समय यदि अतिथि आ जाए तो पहले अतिथि को अर्पित कर देना चाहिए, फिर भगवान के लिए ले जाना चाहिए। तो ऐसा जो करते हैं वो देवता है, जो अपने लिए बनाते हैं, चखते रहते हैं, खाते रहते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। तो भुंजन्ते ते त्वघम पापा जे पचन्ते आत्म कारणात्। वो लोग जो है अघ है, पापी है, जो अपने लिए ही पकाते हैं और अपने लिए ही जीते हैं, वही असुर है। इसलिए बतलाया कि पहले गाय को अंश को अर्पण करो, पंच बलि है गाय की, गाय के लिए बलिदान मंत्र है, वहां मुझे याद है, मैं करता हूं कि सौरभेयः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः। सौरभेयः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः प्रतिगृहणन्तु मे ग्रासं गावोः त्रैलोक्य मातरः। फिर कुत्ते की बलि आती है, द्वौ स्वानौ श्याम सबलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ। वैवस्वत कुल में, दो यमराज के कुल में जो कुत्ते हुए हैं उनको मैं अर्पित कर रहा हूँ। ताभ्यामन्नं प्रदास्यामि स्याता मेता वहिंसकौ। वो दोनों जो कुत्ते हैं श्याम और सबल, वह दोनों ही इस बलि को ग्रहण करें और हमारे लिए वो हिंसा न करे। कुत्ते पागल क्यों हो जाते हैं, कुत्तों का अंश नहीं देते हैं, जो विधि शास्त्र कहता है उसके अनुसार हम नहीं चलते हैं। तो गाय को खिलाया, फिर कुत्ते को खिलाया। तो श्याम सबलो वैवस्वत कुलोद्भव ताभ्याम अन्नम प्रदास्यामि स्याता मेता वहिंसकौ। फिर आता है पिपीलिका कीट पतंग काचा बुभुक्षिता कर्मणि बद्ध पत्ता तृप्त्यर्थ मन्नम हिमया प्रदत्तम तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु। पिपीलिका मतलब चींटियां, धीरे धीरे जो कीड़ी होती है ना उसके लिए, और जो कीट पतंगे हैं ये उड़ते हुए जीव जंतु, इनके लिए। जो कर्मणि बद्ध बद्धा, अपने कर्म में बधे हुए हैं, जो पिपीलिका होगी, चींटी होगी, कीड़ी होगी, वो धरती की शुद्धि करेगी ही करेगी। वो नीचे खोद करके और वो कणकण दाना दाना ले लेकर के जाएगी। छोटी सी चींटी की आओ तुम्हें सुनाऊ बात, दाना दाना लाला करके भर लेती गोदाम, कभी न थुकती कभी न रुकती ना करती आराम। तो जो चींटियां हैं छोटी छोटे जीव हैं यह भी हमारे सृष्टि के पर्यावरण की रक्षा में लगे हुए हैं, इसलिए इन्हें हमें खिलाकर के खाना चाहिए। अब उसके जगह क्या आ गया, अपने यहाँ कीड़ा मकोड़ा मारने वाले वो सब दुनिया भर के फिनाइल चल पड़े हैं। तो जो हमारी चिड़िया मित्र थी वो अब आती ही नहीं है। विज्ञान तो आया लेकिन जो उसमें हिंसा इतनी ज्यादा हो गई कि जो धरती के हमारे मित्र तत्व थे उनका संहार होने लगा। हम लोग गांवों में देखा करते थे माताएं जब चिटियां लगती थी कीड़ियां तो वहां थोड़ा शक्कर का दाना अथवा वो लोट छीट दिया करती थी और उसे वो ले करके चली जाती थी। अब आज तो फिनाइल का बोतल लगा देते हैं। अरे उनके लिए भगवान ने वो बना रखा है, क्या बोलते हैं वो काचंडा की जो जाति है, गिलोड़ी क्या कहते हैं आप उसको, हाँ वो काचंडा की तरह से वो बना रखा है भगवान ने, वो उनके लिए वो जीव जीव के हिंसा के लिए भगवान ने नियंत्रित करने के लिए सृष्टि बना रखी है। आपको मारने की जरूरत नहीं है, आप मनुष्य हो तो कीड़े मकोड़ियों को भी खिलाओ, फिर अतिथियों को खिलाइए और फिर वृक्ष को, वृक्ष के लिए भी आया है, फिर कौवे के लिए आया है। बायसा प्रतिगृहणंत भूमौ वन्न मयोजितम, फिर बायस की बलि आई है। लोग कहते हैं ना कौवा पीतर होता है, काक बलि यहाँ लोग करते हैं, गुजरात में काक पास धराते हैं, कहते हैं काक पास धरा रहे हैं, क्यों, तो काक जो है वो यम का प्रतिनिधि है। अभिप्राय यह है कि हमें इन प्रकृति के जीवों को अर्पित करके, अतिथि को अर्पित करके और उसके बाद जो बचे ना उसे हमें खाना चाहिए। भगवान को भोग लगा करके तब खाना चाहिए, तब हम मनुष्य की गिनती में आएंगे। इसी को गीता कहती है, यज्ञ शिष्टा सन संति मुच्यंते सर्व किल विषयी, यज्ञ के शेष से जो बचा हुआ है उसको खाने वाले सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, और ऐसा नहीं करते हैं तो सबसे बड़े पापी है। दैत्य लोग ऐसा नहीं करते हैं, दैत्य लोग सिर्फ अपने खाने में ही लगे रहते हैं। प्रकरण ऐसा है कि जो व्यवहारिक बातें हैं ये आपको न बतावे तो ठीक नहीं है। तो दैत्य और जब देवता की बातें आती है तो देवतत्व यही है जो